लोग भगवान कृष्ण के लिए या देवी देवताओं के लिए एक घर रखते हैं छोटा सा, कहते वो भगवान का घर है। मैं बेटन रूज में एक दिन एक व्यक्ति के पास गया था, तो मैं प्रणाम किया बाहर घर में, चित्र रखा हुआ था। तो एक छोटी लड़की थी, वो उत्तर भारत की थी, छोटी सी बेटी, वो हमसे कही कि भगवान का घर उधर है, आप इधर क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं कहा ठीक है, यहाँ भी भगवान है, चलता हूँ। तो छोटी सी बच्ची बताई कि भगवान का घर उधर है, तो मैं गया वहां प्रणाम किया। वहां कृष्ण बलराम थे और भगवान के साथ साथ कुछ देवी देवता की भी मूर्तियां थी। आदर करना चाहिए देवी देवताओं का भी, लेकिन भगवान के बराबर नहीं रखना चाहिए, उनसे अल्टर में नीचे रखना चाहिए। तो इस तरह हम बहुत अच्छा घर बनाए हैं, तो उसमें घर का कुछ हिस्सा भगवान को दे, तो सारा घर भगवान का ही है, लेकिन उनके लिए प्राइवेट घर होना चाहिए, और छोटा में बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए। उनको घर देना, उनको धन देना, भोजन देना, रोज जो भी खाते हैं शुद्ध चीज पहले भगवान को अर्पित करना, ये अर्पण करना है। तो यहाँ प्रश्न किया जाता है किम पुनः, इसको कैमुत्य न्याय कहते हैं संस्कृत में। जैसे यह कहा जाए कि एक मनुष्य 100 क्विंटल उठाने की शक्ति रखता है, तो 100 ग्राम उठाने के विषय में तो कहना ही क्या है, किम उत्तर। अगर 100 क्विंटल उठा सकता है तो फिर 100 ग्राम उठाने के लिए क्या कहना। तो ये इसको कैमुत्य न्याय कहते हैं। जब कृष्ण को मारने की नियत से, उनकी हत्या करने की नियत से, उनको जहर दे करके भी माता की गति पाया जा सकता है, वो इतना आदर किए, तो फिर उनको यदि हम कुछ अर्पण करते हैं, फल पुष्प या रुपया पैसा, अपना प्रिय स्वजन, अपना घर, अपना तन, अपना मन, तो फिर भगवान क्यों नहीं हमारा आदर करेंगे, क्यों नहीं हमको अपना बनाएंगे। अब इसके विषय में तो कहना ही क्या है, किम पुनः। तो यहाँ यह सिखाया गया है, पुत्र ने जहर देकर भगवान को पाया, लेकिन हमें अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करने की शिक्षा लेनी चाहिए। तो वह भगवान का धाम प्राप्त की, भगवान का पार्षद बन गई, मतलब माँ बन गई। तो फिर अब फिर पुनः करें, फिर भगवान की माताओं के लिए तो कहना ही क्या है। जिन गौओं का दूध कृष्ण पीते हैं, यशोदा का दूध पीते हैं, अब उनके विषय में क्या कहना, किमनो किमनो, फिर कई कैमुत्य न्याय हो जाएगा। साधारण व्यक्ति यदि कुछ भगवान को दे तो उस वो भी अनंत है, फिर माता यशोदा के लिए, गौओं के लिए तो कहना ही नहीं, वो कितना कृष्ण का प्रिय है, कृष्ण कितना उनको अपना मानते, इसमें क्या कहना है। तो कत धूमस सौरभ्यम अवग्राय ब्रजौक्षा, जब ब्रजवासी लोग चारों ओर बिखरे थे और लाश जलाया गया, शव जलाया गया, उसे सुगंध निकली, तो वे लोग आपस में बात कर रहे थे, ये क्या है, ये क्या है, कहाँ से सुगंध आ रही है इतनी, कहाँ अगरु जलाया जा रहा है, कहाँ जलाया जा रहा है। जो लोग दूर दूर थे गौए लेकर के इधर उधर, वो सब आए, यही कहते हुए आए, और सुने कि पूतना आई थी, राक्षसी आई थी, कृष्ण को उठा कर ले गई थी, तो बड़े विस्मित हुए। फिर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, इसी तरह इस बच्ची की रक्षा करते रहना, हे नाथ, हम कुछ भी सुकृत किए हों तो हम अपना सारा सुकृत अर्पित करते हैं, हमारे पुण्य के प्रभाव से बच्चा सुरक्षित रहे। उनको पता नहीं था कि यही बच्चा सबकी रक्षा करता है और उसी की वो प्रार्थना कर रहे। नंद बाबा आए अब निकट अपने पुत्र के, आते ही गोद में ले लिए और सिर सूंघे, अपने छोटे पुत्र का सिर सूंघने से उसकी उम्र बढ़ती है, ये हमारा वैदिक नियम है। तो अपने पुत्र का सिर सूंघना चाहिए, अपने से छोटे का सिर सूंघा जाता है, बड़े लोग सिर सूंघते हैं। तो सिर सूंघे, आशीर्वाद दिए और पुलकित तो हो गए, गोद में लेकर के परम आनंदित हुए, क्योंकि कृष्ण आनंद घन है, आनंद के अलावा कृष्ण के शरीर में और कुछ नहीं है। तो उनको लेकर के आनंदित हो गए नंद बाबा। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के श्रवण का फल बताते हैं, ये तन पूतना मोक्षम कृष्ण सार्वभौम अद्भुतम श्रृणुयात श्रद्धया मर्त्यो। गोविंद लभते रति। कोई भी मनुष्य जो कृष्ण की इस लीला को सुनता है, उनके बचपन की इस लीला को जिसने पूतना को मातृ गति दी है, यह सुनने मात्र से उसे कृष्ण में प्रेम प्राप्त होता है। गोविंदे रतिम लवते, रति का अर्थ होता है सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम कृष्ण में उत्पन्न होता है। यह इस लीला के श्रवण का फल है। तो आज हम लोग भगवान की इस लीला को सुने, पूतना उद्धार की। कल उनके शकटासुर भंजन और तृणावर्त उद्धार की लीला सुनेंगे। हरे कृष्ण जय श्री। भागवत जी की आरती होगी। ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल। ठीक है, जल्दी जल्दी बदल दी। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमह सधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। आप कीर्तन चलता रहे, यहाँ भगवान को आकर के प्रणाम करें, यहाँ प्रसाद ले लेकर के जाएं।
सरस्वती देवे भगवान प्रचारिन देव से शून्यवादी अच्छे प्रचारिन जय शेख सेना के तन्या प्रभु नित्यानंदा सियादेता गदाधा शिव सदि गौर भक्तवृंदा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा सियादेता गदाधा शिव सदि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रीअद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद जय कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा सियादेता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय
जय गोपाल जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
बोले राधा रमन हरि गोविंद जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
बोल राधा रमन हरि गोविंद जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय
गोविंद 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 जय जय
बोलो गोविंद 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 जय जय गोपाल 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 जय जय
गोपाल 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 जय जय
गोपाल 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 जय जय
गोपाल 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 जय जय
राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय
गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय
राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय
हरे हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरि हराय
नमः कृष्ण जादवाय नमः
हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरि
हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरि
जादवाय माधवाय केशवाय नमः
जादवाय माधवाय केशवाय नमः
जादवाय माधवाय केशवाय नमः
जादवाय माधवाय केशवाय नमः
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन
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 गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन
गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन
गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन
गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन
चैतन्य नित्यानंद सिया रेत सीता चैतन्य नित्यानंद सिया रेत सीता
चैतन्य नित्यानंद
हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता
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 तेरो श्री सनातन भक्त रघुना
तेरो श्री सनातन भक्त रघुना
तेरो तेरो श्री सनातन भक्त रघुना
जय
देव गोपाल भक्त दास रघुना
जय देव गोपाल भक्त दास रघुना
जय देव गोपाल भक्त दास रघुना
जय देव गोपाल भक्त दास रघुना
हरे हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरि
हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः
हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः
हराय नमः
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे
जय राधे जय राधे जय राधे
जय जय प्रभुपाद
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 प्रभुपाद प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी
जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन जय व्रज जन रंजन
जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन जय व्रज जन रंजन
जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय व्रज जन रंजन
जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय व्रज जन रंजन
जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी
जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी
जय जमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी
जय जमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी
नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में भगवत कथा के साथ साथ फिलॉसफी है, दर्शन है, बीच में प्रश्न किया जाता है। महाराज परीक्षित बारंबार प्रश्न किए। भागवत ऐसी कथा नहीं है कि बस चालू कर दिया, वक्ता और श्रोता बस सुनते जा रहे हैं, सोए चाहे कुछ भी हो वो सुनते जाते हैं। जैसे हम देखे हैं हमारे गांव में कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है और सुनने वाली स्त्रियां होती हैं, माताजी लोग होती हैं सुनने वाली, और कुछ नहीं सुनती हैं, वो संस्कृत में पंडित जी पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, जब शंख बजता है तब उनकी नींद खुलती है सुनने वालों में, और गिनती जाती है कि कितने बार शंख बजाया गया, और 5 बार बज गया बस बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रसाद बांटो हो गई कथा। और हर एक पूर्णमासी को, हर एक पूर्णिमा को कथा होती रहती। तो श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसी नहीं है, इसमें बीच बीच में जिज्ञासा है, इंक्वायरी है। महाराज परीक्षित भागवत कथा का अभिनंदन करते हुए कहते हैं राजोवाच, जेन जेनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च नः प्रभो। सुखदेव गोस्वामी को प्रभु संबोधित कर रहे हैं, हे प्रभो, हे समर्थ, हे कृष्ण कथा के मर्मज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जिन जिन अवतारों में, जेन जेनावतारेण जिस जिस अवतार में जो जो भी लीला करते हैं, वे लीलाएं कर्ण रम्याणी, कान को सुख देने वाली होती हैं, और मनोज्ञानी च, और मन में भी बड़ा प्रीति उत्पन्न करती हैं, प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कान के लिए और हृदय के लिए बहुत सुंदर है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हमको प्रिय शब्द सुनने को मिले, और उन शब्दों का प्रिय अर्थ जब विचार करता है मन में, तो उसका मन सुख में डूब जाता है, सुख प्राप्त करता है। तो शब्द से कानों को सुख देती हैं लीलाएं, और अर्थ से मन को सुख देती है। इसमें महाराज परीक्षित कृष्ण लीला को कर्ण रम्य और मनोज्ञ कह रहे हैं। मनोज्ञ का अर्थ होता है मनोहर, मन को सुख देने वाली लीलाएं। और केवल सुनने मात्र से क्या प्रभाव होता है इसका वर्णन कर रहे हैं। जत छिण्वतो अपैत्य रतिर वितृष्णा सत्वम च शुद्ध्यत अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषेश च सख्यम तदेव हारम बदमन से चेत। जक्षिणवतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो व्यक्ति सुनता है तो अरति ही और वितृष्णा अपायति, उसकी मनोग्लानी दूर हो जाती है। मनोग्लानी का अर्थ होता है प्रत्येक मनुष्य अपने मन में कुछ अभाव का अनुभव करके दुखी रहता है इस संसार में, इसको मनोग्लानी कहते हैं। खेद करता रहता है, कुछ चिंता करता रहता है, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो पहले तो अभाव का अनुभव करता है, इसको मनोग्लानी कहते हैं। और उस अभाव के कारण उसके मन में बहुत वस्तुएं प्राप्त करने की लालसाएं उठती हैं, उनको वितृष्णा कहते हैं, विशेष तृष्णा या विविधा तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है प्यास, त्रीट। जैसे हमें प्यास लग जाती है तो हम पानी की इच्छा करते हैं, जल पीना चाहते हैं, उस समय जल की उत्कंठा होती है, कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा। तो इस तरह संसार में प्रत्येक जीव भोगों के लिए प्यासा है, वो चाहता है हमें ये भोग मिले, हमें वो भोग मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले, सूंघने को, स्पर्श करने को, खाने को। तो इसको वितृष्णा कहते हैं। और इस संसार के भोगों का यह स्वभाव है कि जितने भी भोग मिलते हैं तो वे एक नए अभाव की सृष्टि करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी वस्तु की जरूरत है, जैसे एक भिन्न प्रकार की कार की जरूरत है, तो जब ही वो वस्तु मिलती है तब ही वो वस्तु अनेक अभाव पैदा कर देती है। फिर ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए वो चाहिए, फिर इंश्योरेंस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। एक वस्तु आती है हमारी मनोकामना की थोड़ी सी पूर्ति करके अनेक कामनाएं पैदा कर देती। यह संसार विविध तृष्णा से भरा हुआ है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथा मिलती है तो मनुष्य तृप्त हो जाता है, और उसे विश्वास हो जाता है कि जीवन में जो कुछ मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया, यही है प्राप्तव्य, यही है गोल। तो महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंत में कृष्ण कथा को पाकर परम संतोष व्यक्त कर रहे हैं। जत शिण्वतो अपायत्य आरति, आरति रति का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रेम। इस संसार में किसी भी मनुष्य को आनंद से रहना चाहिए, सुख से रहना हमारा बर्थ राइट है, क्योंकि हम आनंदमय हैं। हम दुख से रहने के लिए संसार में नहीं बुलाए गए। लेकिन अन्य वस्तुओं को पाकर हमारी ग्लानि जाएगी नहीं, मन से अभाव की अनुभूति जाएगी नहीं। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण का अनुभव नहीं करेंगे, उनकी कथा नहीं सुनेंगे, तब तक यह ग्लानि नहीं जाएगी। यह संसार का राजा बना दिया जाए पूरे विश्व का, तब भी ग्लानि नहीं जाएगी। ये न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर है तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मन में कामना है, कामना है। लेकिन एक व्यक्ति को यदि पूरा न्यूयॉर्क दे दिया जाए, पूरा, कि तुम ही इसके सब कुछ मालिक हो, जितना पैसा हो रहा है तुम्हारा है, बैंक में जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, लेकिन फिर भी वो करेगा क्या? वो इसको बढ़ाना चाहेगा, वो सोचेगा पूरा यूएसए हमारा होना चाहिए, केवल न्यूयॉर्क नहीं। ये भी पूरा हो जाएगा तो सोचेगा कि पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया सब मेरा होना चाहिए। ये भी हो जाने पर लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। इतिहास बताता है कि तीनों लोकों पर जिनका शासन था वे भी कोई न कोई अभाव की अनुभूति करते थे। हमारा इतिहास बताता है नहुष महाराज जो स्वर्ग गए, स्वर्ग में इंद्र का पद उनको दिया गया, तो इंद्र के आसन पर बैठ करके वे संतुष्ट नहीं हुए। इंद्र जैसी शक्ति सब कुछ, वे इंद्र की पत्नी पर लुब्ध हो गए और उसके कारण उन्हें फिर अजगर का शरीर लेना पड़ा, सर्प होना पड़ा। तो यह तो जीव की दशा है। मन में एक अनुभूति हो रही है कि हमको यह नहीं है, हमको यह नहीं है, यह नहीं है। समस्त अभावों को पूरा कर देती है भगवान की कथाएं। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी कमाई है। यह सामान्य बात नहीं है कि बैठ करके भागवत सुनना, यह कोई फैशन नहीं है रियली। यह शिण्वत पुंस, जब कोई पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है तो उसकी ग्लानि दूर हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है इस दिव्य कथा को पाकर, और उस ग्लानि के कारण जो विविध तृष्णा रहती है उसकी वो भी चली जाती है, और सत्वम विशुद्धयति, हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय की गंदगी क्या है? भागवत में बताया गया है काम और लोभ, यही हृदय की गंदगी है। काम और लोभ, काम का अर्थ होता है कामना, इच्छा। किसी वस्तु की हमें कामना होती है और जो वस्तु मिलती है तो वह कामना ही लोभ का रूप धारण कर लेती है, और यदि वह काम विफल होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर वो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। काम सेटिस्फाइड होने पर लोभ हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होने पर क्रोध का रूप धारण कर लेता है। कभी भी काम शांत नहीं होता है। तो ये सब दोष हैं, लोभ है और काम, लस्ट और ग्रीड, ये हृदय के दोष है। ये भगवत कथा सुनने से सत्वम विशुद्धयति, हृदय शुद्ध हो जाता है, और भक्ति हरौ, तब भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है भगवान श्री कृष्ण में। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब, जब कोई दूसरी कामना नहीं रहती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान को हरि कहा गया है। ऐसे हरि शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, लेकिन दो मुख्य अर्थ होते हैं। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। जो अपने आश्रित के, अपने भक्तों के, भजन करने वालों के सब प्रकार के अमंगल को हर लेते हैं उनको हरि कहते हैं। और प्रेम दिया हरे मन, और अपना सौंदर्य दिखाकर, अपनी बांसुरी सुनाकर, अपने नुपुर की ध्वनि सुनाकर, अपने सौंदर्य से, माधुर्य से जो सभी जीवों को अपने तरफ खींचते हैं, चुरा लेते हैं चित्त, हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम प्रसिद्ध है। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, सारा अमंगल दूर कर लेते हैं। उनका केवल नाम जप किया जाए, केवल स्मरण भी किया जाए तो हमारा सारा अमंगल हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और मन तो हर ही लेते हैं, ऐसी उनमें ऐसा सौंदर्य है, माधुर्य है कि किसी का भी चित्त हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो ऐसे हरि में, परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीणवतः कौन सा, केवल सुनने मात्र से, केवल सुनने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और तत्पुरुषे च सख्यम, और तत्पुरुष मतलब कृष्ण के जो पुरुष हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनमें सख्य हो जाता है, उनसे मित्रता होती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के कोई न कोई मित्र हैं। जैसे सबसे पहला मित्र मनुष्य का अपनी पत्नी है। महाभारत में पूछा गया है कि ईश्वर के द्वारा मनुष्य का, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य का सखा कौन है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है जक्ष के प्रश्न में कि किसी भी मनुष्य के लिए ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ सखा उसकी पत्नी है। पत्नी मनुष्य का मित्र है, नेचुरल ईश्वर ने बनाया है। हम लोग भी देखते हैं कि जब विवाह का समय आता है तो लोग कहते हैं जहां भावी होगी वहां होगी, जहां लिखा होगा वहां होगा। विवाह वास्तव में लिखा रहता है, आदमी को पता नहीं रहता है कि किस स्त्री के साथ विवाह होगा, लेकिन वो ऊपर से सब निश्चित रहता है। कई जगह विवाह कट जाता है, लगता है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बातचीत होती है तब तक फिर कट जाता है। और जहां कोई बातचीत नहीं होती है कभी कभी वहां विवाह हो जाता है। तो सख्य है, केवल स्त्री पुरुष में सख्य है कि वे दोनों मिलकर संसार को सुखी करना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी संसारिक स्थिति को वे कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। इसी तरह से समाज बनता है, एक परिवार बना, समाज की इकाई है परिवार, और इसके बाद फिर देश बनता है और सब बनता है। एक दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। जैसे आजकल के लोग कहते हैं आप हमसे संबंध कीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे, कम दाम में हम बहुत अच्छी चीज देंगे। सेव 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 सब जगह इधर लिखा रहता है, सेव 50%, सेव 60%, मतलब मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका बचाना चाहता हूँ, कम दाम में मैं आपके जीवन को आरामदेह बनाना चाहता हूँ, आराम देना चाहता हूँ। और मनुष्य सांसारिक भोग के लिए, सांसारिक सुविधा के लिए फिर सख्य स्थापित करता है, मित्रता करता है, प्रेम करता है, कम्युनिटी बनाता है, जो भी करता है। लेकिन जब भगवान से प्रेम होता है जीव का, तो वह उन्हीं लोगों से प्रेम करता है जो भगवान के भक्त होते हैं, वह दूसरे से प्रेम नहीं करता है। कि प्रेम का आधार क्या है, संसार से हम प्रेम करते हैं तो उसका आधार है इंद्रिय तृप्ति। हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए एक समाज बनाते हैं, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो उस धरातल पर उनके भक्तों से हमें प्रेम होता है। उन्हीं को हम अपना सबसे बड़ा बंधु मानते हैं, भाई मानते हैं, ये छोटी उम्र वाले पिता मानते हैं, बराबर उम्र वाले मित्र मानते हैं। जैसे परिवार में स्त्री पुरुष का संबंध होता है या पिता पुत्र का संबंध होता है, बहुत निकट का संबंध, वैसे वैष्णवों से संबंध हो जाता है, उन्हीं को अपना बंधु मानते हैं, उन्हीं को अपने सहायक मानते हैं जब भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने पर ये पांच बातें होती हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं। मनोग्लानी दूर हो जाती है, विविध वासना चली जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान में प्रेम होता है और भगवान के भक्तों से मित्रता होती है। ये पांच बातें होती रहती है एक ही साथ। तो इसलिए आप भगवत कथा का वर्णन कीजिए, अथान्यदपि कृष्णस्य तोका चरितम अद्भुतम। जैसे आपने पूतना उद्धार की लीला कही, वैसे कृष्णस्य अन्यदपि तोका चरितम वदस्व। आप श्री कृष्ण के अन्य बाल लीला का भी वर्णन कीजिए। मानुषम लोक मानस मासाद्य तज्जाति मनुरुंधत। भगवान श्री कृष्ण अपना नराकार विग्रह इस जगत में प्रकट किए और मनुष्यों की नकल कर रहे हैं, मनुष्य जाति की लीला किए। तो बचपन में कैसी कैसी लीला किए, कृपया हमें सुनाइए। ये महाराज परीक्षित का प्रश्न है। तो श्रीमद् भागवतम में श्रोता के हार्दिक भावनाओं का वर्णन किया गया है। कि कथा सुनने के बाद उसके मन में क्या लालसा हो रही है। महाराज परीक्षित ने कभी नहीं कहा कि अब हो गया बंद कीजिए अब हम चलें, कभी ऐसा नहीं कहे। प्रत्येक बार वो कहते आगे सुनाइए आगे सुनाइए आगे सुनाइए, और लालसा बढ़ रही थी। और महाराज परीक्षित ने एक जगह कहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के भक्त कृष्ण कथा में उसी तरह रुचि लेते हैं जैसे कामी लोग स्त्री की चर्चा करने में रात रात दिन दिन भर बिता देते हैं। वो टीवी देखना चालू करेंगे तो उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती है, वो देखते रहते हैं। कभी कभी रात रात भर बात करते रहते हैं स्त्री के विषय में, उनमें उनको कोई तृप्ति नहीं होती। तो भगवत भक्तों की तुलना ऐसे पुरुषों से सुखदेव गोस्वामी ने की है। वे कृष्ण की वार्ता करते हैं तो चाहे दिन बीत जाए रात बीत जाए या साल बीत जाए उनको पता नहीं चलता, निरंतर भगवान के गुणों का बखान करते रहते हैं। और भगवान में तो अनंत गुण है। ये महाराज परीक्षित के प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच कदाचिदौथानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचक चकार सुनो रविसेचनम सती। भगवान श्री कृष्ण जब एक महीना के थे 30 दिन के, तो वे करवट बदले जिसको अंग परिवर्तन कहते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो प्राय उत्तान सोते रहते हैं, तो बैठ नहीं सकते खड़ा नहीं हो सकते और यहाँ तक कि अपने अंग को पलट भी नहीं सकते, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं से होते नहीं है। जिस दिन है वो अंग बदलते हैं तो यह माना जाता है कि इसका सारा शरीर ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने के औथानिक लीला का वर्णन किया जा रहा है। उत्थान से औथानिक बना है। जिस दिन वे अपना अंग परिवर्तन किए करवट बदले, चित सोए थे उत्थान सोए थे तो ऐसे करवट बदले, तो उस दिन एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ नंद भवन में। और उसी दिन कृष्ण का जन्म नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र भी उसी दिन था। श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे तो नक्षत्र भी जन्म का था और करवट भी बदले थे अंग बदले थे, इसीलिए माँ जसोदा और नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव किया घर में। यहाँ हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्लास के लड़के जन्म लेते हैं तो उनका वार्षिक बर्थडे मनाते हैं, हम लोग किसी काम के नहीं है, माता पिता को केवल दुख देने के लिए पैदा होते हैं फिर भी उनका बर्थडे मनाते हैं, तो क्या करे माता पिता को मनाना होता है। वास्तव में यह जो अपना बर्थडे मनाना है यह एक पागलपन है। हम लोग इस संसार में आए हैं, ये सजा दी गई है, माया ने सजा दिया है, दंड दिया है, लेकिन हम इस दंड को ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये दंड है। 10 महीना गर्भ में रखना, मल मूत्र के थैले में बंद करके रखना जीव को, और फिर प्रकट होता है, कोई ज्ञान नहीं कुछ नहीं, तो उस दिन जन्म को हम लोग मनाना चालू करते हैं, वार्षिक एनिवर्सरी मनाते हैं। जैसे कोई आदमी जेल में जाए, उसको मार पीट कर जेल में किया जाए और जब साल बीते तो वो लगे मनाने जेल में वर्षगांठ कि इसी दिन मैं जेल आया था इसलिए आज मिठाई बांटूंगा और आज भारी उत्सव करूंगा। अरे पागल कहीं, क्या जन्म गांठ मनाना है? वार्षिक जन्म मनाना हो तो जन्माष्टमी मनानी चाहिए, भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जितना भी धन है जो हम खर्च करते हैं अपने उत्सव में, उसको केवल कृष्ण के लिए खर्च करना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। हमारा जन्म ग्लोरियस है नहीं, हम जन्म लेकर क्या किए, क्यों हम मानते हैं कि हमारा जन्म बड़ा ग्लोरियस है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, तो यही बर्थ फिर नरक में भी ले जाएगा। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं किए तो ये हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, ये नरक बर्थडे हो जाएगा। बहुत भारी खतरा लिए हैं हम लोग मनुष्य शरीर पाकर, तो इसको समझना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवत संबंधी उत्सव करते हैं। तो श्री कृष्ण करवट बदले तो औथानिक कौतुकाप्लवे उस औथानी के उत्सव अभिषेक में माँ जसोदा कई गोपियों को बुलाई, आसपास की सभी गोपियों को बुलाई, वे स्त्रियां जुटी और भगवान श्री कृष्ण को नहलाना चालू की, जिसको अभिषेक कहते हैं। अभिषेक, शेख का अर्थ होता है स्नान और अभि का अर्थ होता है सब तरह से, सर्वतः पूरा पूरा अभिषेक करना, कई प्रकार के सुंदर जल से और औषधि डाले हुए जल से और वेद के मंत्रों से स्नान कराया जाता है। तो उत्सव चालू हुआ घर में, बहुत लोग जुटे थे, कृष्ण का अभिषेक हुआ। बादित्र गीत द्विजमंत्र वाच, कही बादित्र घर में बाजे बज रहे थे और गीत गीत गाया जा रहा था, स्त्रियां गीत गा रही थी और लोग भी गा रहे थे, ब्राह्मण वेद का मंत्र पढ़ रहे थे और इस तरह उत्सव चल रहा था। ऐसे उत्सव के साथ माँ जसोदा अपने पुत्र का अभिषेक कर रही थी। तो नंदस्य पत्नी कृतमज जनादिकम, सबसे पहले नंद महाराज की पत्नी जसोदा, और इस तरह उत्सव चल रहा था, ऐसे उत्सव के साथ माँ जसोदा अपने पुत्र का अभिषेक कर रही थी। तो नंदस्य पत्नी कृतमज जनादिकम, सबसे पहले नंद महाराज की पत्नी यशोदा कृष्ण को स्नान कराई। कृतमज्जनादिकम, मज्जन का अर्थ होता है स्नान। सब प्रकार के नियमों में स्नान पहला नियम है, मनुष्य को चाहिए कि वो स्नान की आदत डाले। सबसे पहले जब हम सोते हैं तो यह शरीर मुर्दा हो जाता है, मरण और शयन में कोई भेद नहीं है, हम 4-5 घंटे के लिए मर जाते हैं, इसीलिए सवेरे जगते ही शरीर को धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इसके 9 दरवाजे हैं, उनको साफ करना, दांत साफ करना, इस शरीर को साफ करके इसके बाद चाहे ऑफिस जाए आदमी या विद्यालय जाए या कहीं जाए, पहले साफ करना चाहिए, यह आवश्यक है। तो स्नान कराएं और तिलक आदि करके और ब्राह्मणों के द्वारा विप्रई स्वस्तैनम सुपूजित, स्वस्तैन कराई, स्वस्तैन स्वस्ति वाचन कराई। आप लोग इस शब्द को बारंबार सुने होंगे, इस पर विचार कीजिए, स्वस्ति का क्या अर्थ होता है। स्वस्ति शब्द संस्कृत के 2 अंतर्भुक्त शब्दों से बना है, सु अस्ति स्वस्ति, और सु का अर्थ होता है अच्छा, वेल अच्छा, और अस्ति माने अस्तित्व सत्ता। जब हमारी शोभन सत्ता होती है, जब हमारा एग्जिस्टेंस बिल्कुल गुड होता है, अच्छा होता है, तो इसको स्वस्ति कहते हैं। स्वस्ति इसका अर्थ है कि हम लोग नित्य भगवान के दास हैं, जब हमारा चित्त भोगों से विरत होता है, हमें कोई दुख नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, हमारा मन बेचैन नहीं होता है, भगवान में लगा रहता है, हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब तरह से जब ठीक रहते हैं और हम भगवान में लगे रहते हैं, तो इसको स्वस्ति कहते हैं। लेकिन ऐसी शोभन सत्ता को कायम करने के लिए वेदों में उपाय बताया गया है और शब्दों में बहुत बड़ा बल है, केवल उनके उच्चारण से हमारी शोभन सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो उसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, उनके पढ़ने से सब जगह कल्याण छा जाता है, स्वस्ति वाचन इसको कहते हैं। किसी भी कर्म के पहले स्वस्ति वाचन करते थे ब्राह्मण लोग, पहले स्वस्ति वाचन, और सबसे बड़ा स्वस्ति वाचन है भगवान का नाम। इस युग में कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम, तो उसके पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, ये स्वस्ति वाचन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जन्नाम श्रुति मात्र पुमान भवति निर्मला, भगवान के नाम से बढ़ करके स्वस्ति वाचन और कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम लेने से मंगल हो जाता है। तो माँ जसोदा स्वस्ति वाचन करा रही थी। अन्य दिवास सृगभिष्ट धेनु भी किन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा रही थी, तो सुपूजित है, मतलब ब्राह्मणों की पूजा की, किस चीज से पूजा की, अन्नादि भोजन कराई। अब तो वहां घी की कोई कमी नहीं थी, गौएं 9 लाख थी तो घी का तो भंडार ही था, इसलिए ब्राह्मणों के लिए पकवान बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी खा सके, जो भी मिष्ठान ब्राह्मण जो कुछ भी खाए, तो अन्न वासह, वासह माने वस्त्र, ब्राह्मणों को वस्त्र दान दिया गया, स्रग और रत्नों की मालाएं दी गई और धेनु भी, गौएं दान दी गई, ब्राह्मणों को गाय दान दिया, गौओं का दान दिया गया और जो भी वो चाहते थे, या अभिष्ट धेनु का अर्थ जैसी गाय चाहते थे वैसी गाय उनको दी गई, तो वे लोग स्वस्ति वाचन कराए, वो संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से उस घर में उत्सव चल रहा था, गान बजान चल रहा था, माँ जशोदा गोद में ली थी कृष्ण को, तो गोद में पड़े पड़े कृष्ण को नींद आने लगी, कृष्ण सोने लगे। और माँ जशोदा अभी दूध पिलाई नहीं थी, अभी स्वस्ति वाचन करा रही थी और सब करा रही थी खुशी में, और तब तक बच्चे को नींद आने लगी। नींद आने लगी तो घर में कहीं जगह थी नहीं, उत्सव था, कहीं पकवान रखा हुआ है, कहीं वस्त्र रखा हुआ है, कहीं कुछ, कई लोग आए थे अपने संबंधी आदि, कहीं जगह नहीं थी। तो माँ जशोदा एक छकड़ा के नीचे, सकट जिसको कहते हैं संस्कृत में, उसी को हिंदी में छकड़ा कहते हैं, बैलगाड़ी, बहुत विशाल बैलगाड़ी थी, और उसके ऊपर दही घी और बहुत सा सामान अन्न आदि रखा हुआ था, घी आदि बड़े बड़े पात्रों में रखा हुआ था। तो उस गाड़ी के नीचे जगह मिली कृष्ण के लिए, तो माँ जशोदा वहां पर अपना बच्चे का छोटा सा पलंग ले जाकर बिछा दी और उसी पर धीरे धीरे सुला दी। सनई शब्द सुखदेव को सनई कहते हैं, बच्चों को सुलाने में बहुत मेहनत पड़ती है, कहीं बीच में जग गया तो फिर डिस्टर्ब करेगा। माँ जशोदा चाहती थी कि सो जाए, क्योंकि घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करना था, उनको खिलाना पिलाना सब कुछ करना था, तो माँ भी चाहती थी कि इसे छुट्टी मिले। तो धीरे धीरे सुलाई, पहले बैठ करके स्वयं सो करके, और जब बिल्कुल सो गया तब धीरे से हटा करके रख दी, जब सो गए कृष्ण। तो घर में आए हुए लोगों का वो स्वागत कर रही थी, खास करके स्त्रियों का। तो अवथानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकसः, समागतान ब्रजौकसः पूजयति, घर में आए हुए ब्रजवासियों की पूजा कर रही थी माँ जशोदा, खिला पिला रही थी, सबको विदा कर रही थी ऐसे। और नैवा श्रोत्वे रुदितम सुतस्य सा, लेकिन अपने पुत्र के रुदन को वो नहीं सुनी। कृष्ण कुछ ही देर में जग गए और रोने लगे, खूब रो रहे थे, लेकिन घर में गान बजान चल रहा था इसलिए जशोदा सुनी नहीं। कुछ बच्चों को कह दी थी कि इसकी रखवाली करते रहना, तो कुछ बच्चे कृष्ण के आसपास थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, खूब रो रहा था रुदितम। रोना बच्चों का बल माना जाता है, बच्चे जब रोते हैं तब माता पिता उनकी खबर लेते हैं, ना रोवे तो वे छोड़ करके अपने जात पर चले जाते। मैं सुना हूं कि इस देश में लोग अपने बच्चों को 2-4 घंटे के लिए कहीं दूसरे जगह दे करके और चले जाते हैं, ये दूसरे लोग पोसते हैं, नर्स के पास छोड़कर चले जाते। वो तो जैसा होगा या होगी वैसे वे बनेंगे बच्चे, क्योंकि उनका एसोसिएशन मिलता है। उचित ये होता है कि घर पर माता पिता रहें, दादा दादी रहें और बच्चे उनके संरक्षण में रहें। हम काम पर जा रहे हैं तो बच्चों को उनके साथ रहना चाहिए। नहीं, पता नहीं कौन कैसा संस्कार वाला है और उसके पास 8 घंटा छोड़ करके चले, तो उसका संस्कार उसमें भरेगा। इन सबके पीछे बड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो बच्चे रखवाली कर रहे थे, कृष्ण रो रहे थे, इस पर कई टीकाकारों ने कुछ उत्प्रेक्षा किया है, कृष्ण क्यों रो रहे थे। एक टीकाकार कहते हैं कि बच्चों को भूख लगती है तो रोते ही हैं, इसलिए भूख लग गई, रोने लगे। वो लीला कर रहे, रोने लगे। लेकिन श्रीपद वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान के हृदय में दुख लग रहा है कि इतना बड़ा घर है और मेरे लिए यही जगह मिली। एक बैलगाड़ी के नीचे मेरे लिए आवास मिला जिसका सारा जगत बनाया हुआ है। तो भगवान ने सोचा कि ये सारे उत्सव का अटेंशन अपने तरफ खींचना चाहिए, और रो रहे थे। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि भला बताओ, मैं बैकुंठ छोड़कर जिसके घर में आया वो मुझे एक बैलगाड़ी के नीचे फेंक करके दुनियादारी कर रही है। तो वो अब रोवे न तो करे क्या। भगवान रो रहे हैं कि भला बताओ, मैं इसके घर में आया गोलोक छोड़कर, बैकुंठ छोड़कर, और हमारी ये बेइज्जती हो रही है, हमको पूछा नहीं जा रहा है। जो भी हो, ये भक्तों का मनोभाव है, ये कोई तत्व नहीं है। भगवान स्वाभाविक रो रहे हैं और भगवान चाहते हैं कि सारा अटेंशन मेरे तरफ आवे। उत्सव में जो लोग खान पान में मस्त हैं, गान बजान में, वे सब हमारे तरफ आए। तो रो रहे थे, खूब रो रहे थे, लेकिन बाजा भी खूब बज रहा था और व्यस्त थी माँ यशोदा। इसीलिए नैव शृणोद्वय रुदितम सुतस्य सा न एव अश्रृणोत, नहीं ही सुनी। कितना भी रोए कृष्ण लेकिन नहीं सुने। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान को रोते हुए छोड़कर भी भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वो रोते रहे, माँ यशोदा भगवान को छोड़ करके भक्तों की सेवा कर रही, ब्रजवासियों की सेवा कर रही, तो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? स्तनार्थी, स्तन पीने के लिए उनको भूख लगी थी। माँ यशोदा के स्तन का दूध पीने के लिए रो रहे थे। बच्चों को चाहे भूख लगे, चाहे शरीर में दर्द हो, वो एक ही उपाय जानते हैं एक्सप्रेशन का, बस रोना। रोते हैं तब माता पिता को पता चलता है कि इसको भूख लगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ नहीं जानती है कि क्यों रो रहा है। भागवत में लिखा है, पेट के दर्द से बच्चा रोता है तो जानती है कि भूख से रो रहा है, तो और खिला देती है तो दर्द बढ़ जाता है। और कभी भूख से रोता है तो सोचती है कि पेट में दर्द है, कोई दवा दे देती है। उसको पता नहीं है कि बच्चा क्यों रो रहा है। यह एक दुख है वास्तव में। हमको ऐसा व्यक्ति पोसा है जिसको हमारी हमारे बारे में पूरा ज्ञान नहीं रहता है। भागवत में दुख का वर्णन किया गया है, तो एक यह भी दुख है। परछंद, इसको परछंद कहते हैं, दूसरे के द्वारा पोसा हुआ। तो भगवान इस तरह रो रहे थे। नीचे सोए थे, तो सोते सोते जब बच्चे रोते हैं छोटे छोटे, तो पैर को ऊपर करते हैं, उछालते हैं, उछालते हैं, हाथ को भी कभी कभी ऊपर उछालते हैं और रोते हैं भूख से। तो कृष्ण रो रहे थे, रोते रोते उन्होंने देखा, ये हमारे ऊपर बैलगाड़ी क्यों है, मैं सबसे ऊपर हूं लेकिन ये हमारे ऊपर क्यों है। और वास्तविक बात थी कि उस पर एक असुर आकर के बैठा था अलक्षित रूप से। वो सोच रहा था कि इस गाड़ी को उलाटूंगा इस बच्चे पर और मार दूंगा। वो कंस के द्वारा भेजा हुआ था। तो श्री कृष्ण रो रहे थे और एकाएक कोमल कोमल पैरों से कोमल पत्ता के समान, कमल की कर्णिका के समान कोमल पैर थे और छोटे 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 पैर। तो एक पैर से ऐसे रोते 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 ऐसे मारे और गाड़ी उलट गया। वो सकट उलट गया और धड़ाम से शब्द हुआ, बहुत भयानक शब्द हुआ। सबका अटेंशन अब इधर आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आकर के देखते हैं तो ट्रक उलट गया है। अब ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। अब सब लोग यही बात करने लगा, अरे कैसे हुआ कैसे हुआ, हे भगवान बच्चा बच गया, यही बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये उल्टा कैसे। माँ यशोदा जाकर के तुरंत बच्चे को गोद में ले ली, इसके बाद चुप कराई। और वैसे वो उलट करके रो ही रहे थे, उसको ध्वस्त कर दिए, जो भी घी दूध आदि रखा हुआ था सब ध्वस्त हो गया। बर्तन फूट गए, सोने चांदी के बर्तन के अलावा और जो भी बर्तन से सब फूट गए, रस बहने लगा। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने देखा कि हमारे ऊपर रस रखा गया है, तो सबसे बड़ा रस तो मैं हूं, हमसे ऊपर रस कौन हो गया, इसीलिए उस रस को उन्होंने मारा, फेंक दिया। वे उत्प्रेक्षा करते हैं, तो रस बह गया और गाड़ी के कुबर और चक्र सब टूट गए, तो चारों तरफ बात होने लगी, सकट उलट गया, सकट उलट गया, कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई, अब किसी को कोई कारण नहीं मिल रहा था, चारों तरफ यही बात होने लगी। कथम वही सकटम व्यवर्जत, कथम स्वयं वही सकटम व्यवर्जत, आपस में सभी लोग बात कर रहे थे, पुरुषों में नंद महाराज मुख्य थे और स्त्रियों में जसोदा जी, स्त्रियां आपस में बात करने लगी, सखी कैसी हो गया, कैसी हो गया, तो बच्चा पर नहीं उल्टा, ये सकट अगर बच्चे पर उलट गया होता तो आज बच्चा मर गया होता, भगवान हरि बचा लिए, निश्चित ही हम लोग बहुत पुण्य किए थे, यह किए थे, वह किए थे, लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन चर्चा का मुख्य विषय था कि ये गाड़ी उलट कैसे गई। ऐसा मान लीजिए कोई समतल जमीन पर ट्रक खड़ा किया गया हो और वो ट्रक अकस्मात उल्टा हो जाए तो आदमी सोचेगा ये क्या हो गया, कोई आंधी नहीं आई या रोड ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये उल्टा क्यों हो गया। माँ जसोदा ने माना कि कोई ग्रह उलट दिया, ग्रह लग गया, कोई ग्रह नहीं लगा था, उसका बच्चा ही सबसे भारी ग्रह था, तो कृष्ण ग्रह सब कर रहा था, किसी को ये पता नहीं था कि बच्चे ने उलाटा है, सब लोग बात कर रहे थे, कोई कुछ अनुमान कर रहा था, कोई कह रहा था कि कोई असुर आया होगा या भूत प्रेत उलाट दिया, अकस्मात घर में क्या हुआ, हाय बाप, कुछ लोग तो बहुत शंकित हो गए, तो किसी एक निश्चय पर लोग नहीं पहुंच रहे थे कि क्या कारण है, क्या कारण है। कुछ बच्चे जो रखवाली कर रहे थे कृष्ण के, तो उन लोगों ने बताया कि ये रो रहा था और रोते रोते इसने पैर से मारा, बस ये छकड़ा उलट गया, तो वो ब्रजवासी का चुप, बच्चा के पैर से गाड़ी उलट गया, तुमको बोलने में शर्म नहीं आ रही। तो बच्चे तो सत्य बोल रहे थे, उन्होंने देखा था कि यही रोते रोते पैर को बढ़ा करके उलट दिया, बच्चे सत्य बोल रहे हैं, वो कृष्ण कथा का है, वो कृष्ण तत्ववेता थे, लेकिन उनकी बात को दूसरे लोग कह रहे नहीं, तुम लोग नहीं जानते, बच्चे क्या जानते, बच्चा क्या जानते, जो देखे हैं साक्षात कृष्ण की लीला को वे बोल रहे हैं, तो उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, कहते हैं कि ये बच्चे, बच्चा होने से क्या हुआ, कोई बूढ़ा हो जाने से थोड़े कृष्ण को जान जाता है, जो जानता है वो जानता है, किसी उम्र में जान सकता है कि नहीं, भगवान का ज्ञान तो किसी भी उम्र में हो सकता है, अरे यदि आदमी भागवत न सुने, न पढ़े, गुरुजनों का संग न करे, तो वो 100 वर्ष से भी ज्यादा जिएगा फिर भी कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा, और छोटा बच्चा भी यदि कृष्ण के बारे में सुनेगा देखेगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो बच्चे फैक्ट बोल रहे थे कि इसने उलाटा है, इसके चरणों से सकट उल्टा, लेकिन वो लोग नहीं माने, है कि नहीं, दूसरे लोग कहे कि क्यों इन बच्चों की बात पर ध्यान दे रहे हैं, अभी से बच्चे झूठ बोलना चालू कर दिए, अभी छोटे छोटे उम्र के हैं और इतना झूठ बोलना चालू कर। द्वारा किया हुआ है, लोग वास्तव में भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान के जो परिकर भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, तो उसमें कोई दूसरा कारण, उसमें स्वरूप शक्ति का प्रभाव होता है। अच्छा, तो माँ जसोदा रोते हुए बच्चे को गोद में ले ली और फिर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराने लगी, फिर वेद के मंत्र पढ़े जाने लगे, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे, फिर स्नान कराया जाने लगा, राक्षसों का नाश करने वाला मंत्र पढ़ा जा रहा था, उसको रक्षोघ्न मंत्र कहते हैं, रक्षा का अर्थ है राक्षस, घ्न मतलब मारने वाले। वेद में बहुत से मंत्र हैं जिन मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई राक्षस उपद्रव न करे, तो उस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। और सभी मंत्रों को एक मंत्र में मिला दिया गया है कलिसंत्रण उपनिषद में, और उसे महामंत्र कहते हैं। महामंत्र यदि हम जपते हैं तो सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसीलिए इसको महामंत्र कहते हैं। इसके भीतर सारे मंत्र समाविष्ट हैं। तो देखिए पुनः ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन होने लगा, तो कुछ बलवान गोपों ने मिल करके पहले उस छकड़ा को सीधा किया, जो टूट गया था उल्टा हो गया था उसको बड़े बड़े बलवान गोप मिल करके सीधा किए, क्योंकि देखने में बड़ा बुरा लग रहा था, अपशकुन जैसा लग रहा था। और सबके मन में शंका थी कि कोई भूत पटक दिया इसको, या कोई ग्रह बाधा हो रही है, कुछ हो रहा है, वो बड़े बेचैन थे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया उस बच्चे को, यह बच्चा चिरंजीवी रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, यह सुखी होगा, यह आगे विवाह करेगा, चिरंजीवी होगा, सुख से रहेगा। भगवान के लिए सब आशीर्वाद व्यर्थ थे कि वो कभी मरने वाले नहीं है, इसलिए चिरंजीवी होने का प्रश्न ही नहीं है। परंतु लीला के अनुसार यह आशीर्वाद ठीक, यह सदा सुखी रहे, यह रहे वह रहे, वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे। कुश से, कुश में पानी लेकर के छिड़क रहे थे बच्चे पर, और आम का पत्ता लेकर उससे छिड़क रहे थे। इधर तो एक दिन मैं यज्ञ करने लगा ह्यूस्टन में, तो पूछा कि कुश है, तो कहीं कुश का पता नहीं लगा। ये जो कुशा ग्रास है वो भगवान वराह देव का रोमा है, रोम है, बड़ा पवित्र माना जाता है। उससे हम लोग धर्म कर्म में काम लेते हैं। तो अक्षत डाला जा रहा था कृष्ण पर, अक्षत मतलब नहीं टूटा हुआ चावल, अक्षत जल दूध दही पानी छिड़क छिड़क कर स्वस्ति वाचन किया जा रहा है। इस तरह अपने बच्चों को भी करना चाहिए। और कोई ब्राह्मण ना मिले तो महामंत्र कह कह करके और पानी डाल देना चाहिए, वो ठीक रहेगा। बच्चों को केवल अस्पताल हॉस्पिटल ले जाने से ही वो ठीक नहीं रहेंगे, घर पर भी स्वस्ति वाचन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए भगवान के लिए भी ये सब किया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कुछ भी हो जाता है बस तुरंत हॉस्पिटल लेकर के भागते हैं। ये सब यहाँ उपाय किया गया है। माँ जसोदा और नंद बाबा कृष्ण को लेकर मथुरा किसी हॉस्पिटल में नहीं भागे, वहीं पर ब्राह्मणों के द्वारा सारा उपचार हो रहा है। और आधुनिक दवाइयों की अपेक्षा वैदिक मंत्रों से चिकित्सा की जा रही थी, तो उपचार हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये असूया नृत दम्भेर से हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्य शीला नाम आशीषो विफला कृता। यह बताया गया है किनका दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है, यह गुण लिखा गया है। जो दूसरे के गुणों में दोष नहीं निकालते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, तो जो दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, और दंभ नहीं करते, दिखावा नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, जो मान की इच्छा नहीं रखते हैं, और जो सदा सत्यशील वाले होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। आशीर्वाद देने की योग्यता बताई गई है, असूया नहीं होनी चाहिए। असूया का अर्थ होता है किसी के गुणों में भी दोष निकालना, गुण को ही दोष के रूप में कहना। जैसे मान लीजिए यदि कहा जाए किसी आदमी को, कोई कहे कि वो अच्छा है, वो धनी आदमी है तो ये कहा जाए कि उसने पूर्व जन्म में बड़ा सुकृत किया था, इसलिए उसको धन प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत अच्छा वाक्य है कहना कि पूर्व जन्म में वो सुकृति था इसलिए उसको धन मिला हुआ है। लेकिन कोई दुष्ट आदमी कहा, जानते हो उसको धन कैसे मिला हुआ? अरे वो सब जुआ में चोरी से वो प्राप्त किया है, ऐसे ही बिना मतलब के बोल देता है। ऐसे बोलने वाले की वाणी की शक्ति खत्म हो जाती है। किसी को दुख देने वाली बात बोल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, दंभ कर रहा है, शास्त्र से विरुद्ध बोल रहा है, तो उसकी वाणी में शक्ति नहीं होती। पहले के साधुओं में और ब्राह्मणों में बहुत शक्ति होती थी, जो वो कह देते थे हो जाता था। तो आज का आदमी जब रोज झूठ बोलता है तो उसके वाणी में शक्ति क्या रहेगी? वाणी की शक्ति ऐसे नष्ट हो जाती है दूसरे की निंदा करने से, जगत की वार्ता करने से, खास करके झूठ बोलने से। ईश्वर क्या है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, इस विषय में सभी लोग झूठ बोला करते हैं। नहीं ज्ञान है ईश्वर का तो कह देना चाहिए हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो निराकार है, ये है, वो है, ऐसा है, अरे क्या नाटक कर रहे हो। नहीं ज्ञान है तो सीधा कह दो कि नहीं ज्ञान है। तो पूछिए कि ईश्वर क्या है, तो लोग कहते हैं वो ऐसा ईश्वर है कि आप उसको जान नहीं सकते हैं, उसका कोई रूप है न, रंग है न, नाम है न, धाम है, ये पागल की तरह बोला करते हैं। शास्त्र में तो सब जगह भगवान का नाम दिया गया है, उनके रूप का वर्णन है, उनके चतुर्भुज रूप का वर्णन है, शंख चक्र गदा लिए हैं या बांसुरी लिए हैं, धनुष बाण लिए हैं, भगवान के रूप का तो वर्णन है, प्रकट वर्णन है, उनके धाम का वर्णन है, उनके परिकरों का वर्णन है, उनके माई बाप का भी नाम है, उनका पूरा एड्रेस है। आजकल पासपोर्ट बनता है तो उस पर माता पिता का भी नाम देना जरूरी हो गया है। तो भगवान का परिचय देना होगा तो उनके माता पिता का नाम बताना पड़ेगा, वो है वसुदेव देवकी या कौशल्या दशरथ, ये सब भगवान के माता पिता हैं। पूरा परिचय भगवान का वैदिक ग्रंथों में। जो व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर निराकार है, ये है, तो झूठ बोल रहा है। ऐसे झूठ बोलने वाले का आशीर्वाद कभी सफल नहीं हो सकता, सत्य बोलना चाहिए। तो आज के युग में भी आज मनुष्य चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद मिले, हमको आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले। बहुत बड़े बड़े प्रयत्नों से जो काम नहीं हो सकता है वो केवल आशीर्वाद से हो जाता है। महाभारत युद्ध में यह वर्णन है, महाभारत में वर्णन है कि जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जुटी तो महाराज युधिष्ठिर गए आशीर्वाद लेने के लिए भीष्म पितामह से, तो प्रणाम किए। भगवान कृष्ण ने कहा उनको कि जाइए प्रणाम कीजिए बड़े लोगों को, तो गए भीष्म पितामह को प्रणाम किए, तो भीष्म पितामह आशीर्वाद दिए, बेटा तुम्हारी विजय हो। और दुर्योधन आदि सब सुन रहे थे, वो लड़ रहे थे विपक्ष से और आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे रहे, बेटा तुम्हारी विजय हो। हमारा युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह आपके रहते हमारी विजय कैसे हो सकती है? तो भीष्म पितामह अपने मरने का उपाय अपने मुख से बताए, यदि कोई स्त्री मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, और उस समय कोई वीर मेरा वध कर सकता है। फिर द्रोणाचार्य को प्रणाम किए तो वो भी आशीर्वाद दिए तुम्हारी विजय हो। कृपाचार्य को, शल्य को, जो भी बड़े थे वो प्रणाम मात्र से कह दिए तुम्हारी विजय हो, और विजय हुई। यहाँ वर्णन किया गया है कि जो लोग दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते, दुख नहीं देते, दंभ नहीं करते, मान की इच्छा नहीं रखते हैं, उनका दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है। पहले के क्षत्रिय हाथ में अस्त्र लेकर चलते थे, लेकिन ब्राह्मण हाथ में वेद लेकर के चलते थे, परंतु सारे जगत में किसी की शक्ति नहीं होती थी कि वे ब्राह्मण को अभिभूत कर दे या हरा दे। उनके वाणी में बहुत शक्ति होती थी और विकट समय में वे साप दे देते थे, तुम मर जाओ, तो वो आदमी उसी समय मर जाता था, उनकी रक्षा हो जाती थी। दो तरह के लोगों का प्रभाव वर्णन किया गया, एक सती स्त्री का और शुद्ध ब्राह्मण का। वो सती स्त्री भी, पतिव्रता स्त्री भी किसी को साप दे देती थी तो तुरंत लग जाता था, ऐसा वर्णन है महाभारत में कि दमयंती के ऊपर, महाराज नल की पत्नी दमयंती थी, उसके ऊपर एक व्यक्ति अग्रेसिव हो रहा था, उसके साथ वो गलत प्रपोजल रखा, बहुत गलत चेष्टा करने की सोच आते ही दमयंती ने कह दिया कि यदि सपने में भी महाराज नल के अतिरिक्त मेरा मन कहीं नहीं गया हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए। बस उसके शरीर में आग लग गई, वो जल कर राख हो गया। ये महाभारत में कथा है, ये पतिव्रता स्त्री का प्रभाव है। बड़े दुख की बात है कि आज के युग में पति काम पर चले जाते हैं तो स्त्रियां टीवी ऑन करके देखने लगती है, जबकि शास्त्र मना करता उन्हें अपने पति के अलावा और किसी को देखना ही नहीं चाहिए। और अपने पति तो टीवी में है नहीं, वो तो दूसरे दूसरे लोग रहते हैं और फिर भी देखा करते हैं। क्या होगा आगे चलकर पता नहीं, मानव समाज कहाँ जाएगा, क्या होगा। और हम तो जिसके घर में भी गए, जहां भी गए, सब लोग ये कहते हैं कि टीवी बहुत बड़ा रोग है, लेकिन सबके घर में है। क्या कहा जाए, आवश्यक बुराई है। सबके घर में है। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा पतिव्रता नारी गंधारी, जब उसका विवाह हुआ है तो उसके पति अंधे थे, वह अंधी नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन में व्रत लिया कि मैं अपने पति को पति के जैसा ही रहूंगी, यदि हमारे पति दूसरी स्त्रियों को नहीं देख सकते हैं तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी, और जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध करके रखी। आज के युग में तो ऐसा संभव नहीं है आंख पर पट्टी बांध कर रहना, लेकिन मन पर पट्टी बांध करके रहा जा सकता है, ये संभव है। तो सीखना चाहिए, वास्तव में सारा पॉपुलेशन आधा स्त्री का है और स्त्रियों पर ही वास्तव में कल्चर निर्भर है। जो पुत्र होता है या पुत्री होती है तो ज्यादा वो माँ का संग करता है, 9-10 महीना तो माँ के पेट में रहता है, जन्म लेने के बाद माँ के गोद में रहता है, तो मनुष्य का अधिक जीवन पिता की अपेक्षा माता के साथ रहता है, तो माता का ज्यादा महत्व है इस विषय में, किसी का भविष्य बनाने में, तो उसे बहुत सजग होना चाहिए। हम लोग प्रत्येक समय स्टेज पर हैं, दुनिया देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बहुत सजग रहना चाहिए। तो यहाँ एक संकेत किया जा रहा है कि किनका दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है। तो इस तरह माँ जसोदा स्वस्ति वाचन करा रही थी, अब इसके बाद नंद बाबा फिर स्वस्ति वाचन कराने लगे। कृष्ण का स्वस्ति वाचन हमेशा होता था, इति बालकम आदाय साम ऋग जजुरुपा करते जलय पवित्र औषधवी रवि शिष्य द्विजोत्तमय। नंद बाबा फिर अभिषेक कराए द्विजोत्तमय श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, और वहां चैत्वा स्वस्तैनम नंद गोपा समाहित, फिर स्वस्ति वाचन कराए, बारंबार वेद मंत्र पढ़ा जा रहा था, हम लोगों को भी रखना चाहिए कीर्तन आदि की कैसेट, कम से कम रखनी चाहिए कि सवेरे लगा दिए, सोते समय लगा दिए, ऐसे टीवी का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें कोई अच्छा भगवान का नाम आ रहा है, भगवान की लीला आ रही है तो उसको लगा सकता है आदमी, या वीडियो लगा दे, सुनने से पहले भगवान का नाम सुनते हुए सोना चाहिए, और जगते ही स्वस्ति वाचन होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, जाकर नाम सुनत शुभ होई। आदमी अपने घर में भी भगवान की भक्ति कर सकता है, जगते ही भगवान का नाम आने लगे, सोते समय भगवान का नाम आवे, कार में कोई कैसेट ऐसा लगा लें जो भगवान की कथा आ रही हो, नाम आ रहा हो, इसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों से हवन कराए और प्रादाद अन्नम महागुणम, पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराया गया अथवा उनको सीधा दिया गया, ये इतना जल्दी जल्दी खाएंगे कैसे, इसलिए श्रेष्ठ अन्न दिया गया, बासमती राइस आदि दिया गया, ये कहने का आशय है। उनको घी आटा या चावल सब ब्राह्मणों को दान दिया गया। गावह सर्व गुणों पेता, और समस्त गुणों से युक्त गौओं का दान दिया गया ब्राह्मणों को। बच्चे का हित करने के लिए दान दिया जा रहा है। हम सबके पास बच्चे हैं, ये सीखना चाहिए। हम अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उसको ठीक रखना चाहते हैं, तो उसके सुख के लिए दान करना चाहिए। नंद बाबा और जसोदा जी दान कर रहे हैं। सर्व गुणों पेता गावा, समस्त गुणों से युक्त गौ है। गौओं में गुण क्या होता है? दो गुण मुख्य है। एक तो बहुत दुधारू गाय होनी चाहिए, उसमें दूध अधिक होना चाहिए, और सीधी साधी होनी चाहिए, सुधी गाय कहते हैं उसको। मरकनी गाय नहीं होनी चाहिए और कम दूध देने वाली। इस प्रकार की गौ स्वभाव बहुत अच्छा और दूध देने वाली, तो ऐसी गौओं का दान दिया गया। और वे गौएं किस तरह से सजा करके दी गई? वासस्त्रग रुक्म मालिनी, गौओं के ऊपर कपड़ा ओढ़ाया गया, रेशमी कपड़ा, रेशमी वस्त्र गौओं पर डाला गया, और सोने की माला पहनाई गई गौओं को। आज सभी आदमी के गले में सोने की माला नहीं है, फिर भी हम लोग मानते हम लोग धनी हो रहे हैं। क्या धनी हो रहे हैं? पहले भारतवर्ष में गौओं को, घोड़ों को, हाथियों को सोने की माला पहनाई जाती थी, और बहुत मोटी मोटी, और वो भी 22 कैरेट की। ऐसा नहीं कि अमेरिकन सोना, बहुत अच्छा किस्म का सोना पहनाया जाता था पशुओं को। मनुष्य को तो अब कहना ही नहीं कितना गहना पहनते थे। तो गौओं को सजा करके दान दिया गया, किस लिए? आत्मज अभ्युदयार्थाय, अपने आत्मज के अभ्युदय के लिए, अपने पुत्र के हित के लिए दान दे रहे थे नंद बाबा। तो जब ये दान दिए तो ब्राह्मणों ने पुनः आशीर्वाद दिया। पुनः ब्राह्मणों के विषय में वाक्य कह रहे हैं। विप्रा मंत्र विदो जुक्ता तैरिया प्रोक्ता तथा शिशह ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपिस्फुट। जो मंत्रवेता ब्राह्मण होते हैं उनके मुख से जो आशीर्वाद निकल जाता है वो कदाचित अपि न निष्फला भविष्यन्ति, वो कभी भी निष्फल नहीं होते। यदि शुद्ध ब्राह्मण हो वह आशीर्वाद दे दे तो उसे सफल होना ही है, वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम, ये निश्चित है, यह स्फुटम ये प्रकट बात है। ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है। आज के युग में ब्राह्मणों से एक द्रोह हो गया है लोगों को तुरंत कह देते हैं ऐ ब्राह्मणों में कोई गुण नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो यहां भी शास्त्र भी कहता है ब्राह्मण में ये गुण होना चाहिए। ब्राह्मण में यह गुण जो पहले बताया गया, उनमें किसी के गुणों में दोष नहीं निकालना, मान की इच्छा नहीं रखना, द्वेष नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, दंभ नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, ये ब्राह्मण में होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न है कि ये गुण नहीं है तो हम क्या करें, कहाँ से ब्राह्मण लावे? तो इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है कि जिस तरह से ब्राह्मणों का पतन हुआ है उसी रफ्तार से, उसी पर पर्सन कहते हैं अनुपात संस्कृत में, उसी अनुपात में सबका पतन हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों का पतन हुआ है और बाकी लोग ऊंचा उठ गए, सबका पतन हुआ है। इसीलिए व्यवहार में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। एक बार की एक घटना है, एक रामचंद्र नाम के राजा थे, भगवान रामचंद्र नहीं, दूसरे रामचंद्र। तो कुछ स्वभाव के उदंड थे, तो राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा कराया कि हम ब्राह्मणों की परीक्षा करना चाहते हैं, हमारे दरबार में आइए। तो बहुत से ब्राह्मण आए और उस राजा ने हौज में, हौदा समझते हैं छोटा सा टैंक, पानी भरवाया, 200-400 लीटर पानी भरवाया। और पानी भरवा करके कहा ब्राह्मणों से कि सुनो ब्राह्मणों, पहले युग में अगस्त नाम के ब्राह्मण हुए थे, वे समुद्र पी गए थे, उनमें इतना बड़ा तेज था। तो तुम में से जो भी ब्राह्मण इस पानी को पी जाएगा 1-2 हजार लीटर पानी, तब मैं मानूंगा कि तुम लोग ब्राह्मण हो। क्योंकि एक ब्राह्मण समुद्र पी गया था, सागर पी गया था, तो तुम इतना पानी नहीं पी सकते हो, तो किस काम के ब्राह्मण। अब ब्राह्मण लोग बेचारे जवाब दे दिए, वो तो केवल 2-4 लीटर पी सकते थे, इससे ज्यादा तो पी नहीं सकते थे। तो सबको वो घोषित कर दिया कि तुम लोग पूज्य नहीं हो। एक ब्राह्मण उसमें बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि राजा जी, आपका नाम रामचंद्र है और एक इतिहास बताता है वैदिक कि पहले रामचंद्र नाम के राजा हुए थे भगवान श्री राम, तो आप क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय थे, उन्होंने पत्थर को पानी में तैरा दिया था, पुल बांधे थे लंका जाने के लिए, पत्थर पानी में तैर रहे थे, हमारे पास है शालिग्राम शिला है, आप इसको पानी में तैरा दीजिए तब हम मानेंगे कि आप सच्चा क्षत्रिय हैं। वो पहाड़ तैरा दिए थे, पर्वत, आप केवल छोटा सा पत्थर तैरा दीजिए पानी में तब हम मानेंगे कि आप क्षत्रिय हैं, नहीं तो नहीं। तो अंत में वो राजा हाथ जोड़कर माफी मांगा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि सभी ब्राह्मण अगस्त जी नहीं हो सकते हैं, जैसे तुम भगवान रामचंद्र नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से जब ब्राह्मण गिरे हैं तो क्षत्रिय भी गिरे हैं, तो गिरे हुए लोग आपस में व्यवहार कर लें। लेकिन आज दोष दृष्टि हो गई है कि अरे वो ब्राह्मण है, ये है, उसमें ये नहीं, वो है, और तुम में सारा गुण आ गया है क्या। आजकल तो एक ये भी चालू हो गया है कि हम ब्राह्मण है तुम नहीं, एक ये भी चालू हो गया हम ब्राह्मण है तुम नहीं हो, यह सब ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। मनुष्य में मान नहीं होना चाहिए, मान विवर्जिता यहां शब्द आया है, मान विवर्जिता, मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण है जिनमें गुण होते हैं तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है। तो कदाचित मान लीजिए यदि ब्राह्मणों में गुण भी न रहे तो सांसारिक व्यवहार का लोप नहीं करना चाहिए, हम अपने समाज के अनुसार व्यवहार कर लें, आदर करना सीखें, हो सकता है उसमें कोई अच्छा ब्राह्मण भी मिल जाए, कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा और जसोदा के इस आचरण से सीखना चाहिए कि भगवान कृष्ण को सुखी रखने के लिए, अपने बच्चे को सुखी रखने के लिए वे ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे थे। तो ये तो सकट उद्धार की लीला हुई, अब तीर्णावर्त उद्धार की लीला सुनिए। एकदा आरोहम आरूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। एक दिन माँ जसोदा कृष्ण को गोद में लेकर लालन कर रही थी, लालयंती, लालन का अर्थ है चुंबन करना, सहलाना, पालन का अर्थ होता है दूध पिलाना, पोषणा आदि, पोषण पालन लालन, लालन का अर्थ होता है हाथ में लेकर उत्तोलन करना, बच्चे को गोद में लेना, चुमना, उसको हंसाना, हंसना, उसको लालन कहते। तो लालन कर रही थी, गोद में ली थी, लालन कर रही थी, तब तक अकस्मात तो बच्चा इतना भारी लगने लगा कि माँ जसोदा उसके भार को सह नहीं सकी, तुरंत नीचे उतार दी, बहुत भारी लगने लगा। बड़ा आश्चर्य हुआ माँ जसोदा को नीचे रख करके, और आश्चर्य में डूब गई कि ये भारी क्यों हो गया इतना। गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत, गिरिकूटवत एक पर्वत शिखर के समान वो भारी लगने लगा, पत्थर भारी लगता है ऐसे महान पत्थर के समान भारी हो गया अकस्मात। यह ईश्वर की लीला है, आप अपना वजन इस तरह से नहीं बढ़ा सकते हैं। रोज तौलते हैं बाथरूम में कुछ लोग अपने को, तो किसी दिन पहाड़ जैसा भारी हो जाएंगे, हो नहीं सकते। वो छोटा सा बच्चा इतना भारी होगा, इतना भारी हुआ, माँ ने तुरंत रख दिया, उसको सहा नहीं गया और आश्चर्य से देखने लगी क्या हो गया इसको। फिर उसके मन में आया कि शायद मेरे मन में कोई ऐसा दुर्विचार आ गया हो, छोड़ो इसको, यहाँ बैठा है, घर का काम धंधा करूं। तो सबसे पहले भगवान की शरण में गई कि हाय हाय भगवान, हमारे बेटा का वजन कैसे बढ़ गया है, इतना भारी कैसे हो गया है। वो भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी, महापुरुष मादध्य, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगी। जैसे नंद बाबा अनिष्ट की आशंका होने पर नारायण की शरण लिए, वैसे ही माँ जसोदा भी अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका से भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान का स्मरण करने लगी। और इसके बाद घर के काम धंधा में लग गई, घर के काम धंधा थे जो कृष्ण की सेवा के लिए थे लग गई। और वास्तविकता ये थी कि भगवान अब तृणावर्त का वध करना चाहते थे, वो आने वाला था, तो भगवान की गोद से वे हटने का उपाय किए। माँ ऐसे छोड़ती नहीं, इसलिए वो भारी लगने लगे, भारी लगने लगे तो माँ छोड़ दी उनको, अपने घर का काम धंधा करने लगी। तो दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित, तृणावर्त नाम का एक दैत्य था जो कंस का भृत्य था, कंस भृत्य कंस का नौकर था। कंस ने भेजा था कि नंद के पास जो उसका पुत्र है उसका वध कर दो, उसको हर कर लाओ, कंस भेजा था। तो आया चक्रवात स्वरूपेण जहारा सिन मर्भकम, वो चक्रवात के रूप में आया। तो चक्रवात गांव में हम लोग देखते हैं, धूल उड़ती है, पत्ते उड़ते हैं, तृण उड़ता है और एक गोलंबर गोला बन जाता है हवा का, उसको चक्रवात कहते हैं। चक्र की तरह घूमता है, बहुत जोर से घूमता है, आसपास के तृण सब उड़ जाते हैं, घर भी कभी कभी उजड़ जाते हैं। तो चक्रवात के रूप में वो आया और बहुत जोर से आया, सब जगह अंधकार छा गया, धूली भर गई, सब लोग इधर उधर आंखें बंद कर लिए अंधकार फैला करके। और जहारा सीनम अर्भकम, अर्भकम आसीनम जहारा, बैठे हुए बच्चे को उड़ा कर ले गया, कृष्ण को ले गया। तो गोकुलम सर्व मावृणवन मुसनन चक्षु सिरेणु भी, संपूर्ण गोकुल में धूल भर गई, अंधकार भर गया और लोगों के आंखों में आंसू आ गए, भर गई आंखें धूल से, सरकरा उड़ रही थी, छोटे छोटे पत्थर के कण तो बालू उड़ रहे थे, और इससे सबकी आंखें बंद हो गई। बहुत भारी शब्द कर रहा था, बहुत जोर की आंधी उठाया, उच्च स्वर कर रहा था, दसों दिशाएं आवाज से भर गई, अंधकार में वो सब छा गया, कोई कुछ नहीं देख रहा था। तो कृष्ण को उठा कर ले गया, जो कृष्ण को उठा कर ले गया तो माँ जसोदा उसी आंधी में ही दौड़ करके गई जहां कृष्ण को रखी थी, जहां बच्चे को रखी थी, जहां वो भारी हो रहा था। तो जा करके माँ जसोदा देख रही है तो वहां बच्चे का पता नहीं है, तो वो तो छाती पीट करके वहीं पर गिर गई, रोने लगी माँ जसोदा, हाय पुत्र हाय पुत्र हाय बेटा कह करके वो रोने लगी। बहुत जोर की आंधी थी, इसलिए सहज अनुमान किया कि इस